Hey guys. ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मय हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। रघु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सबने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ वे सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं से भी उनका नादर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करते उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्री द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर 10,000 से अधिक पार्षद लज्जा और शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय बचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए। परंतु विरोधी प्रभु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कार कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु शंभर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालो, वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष अपनी सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृतांत क्या सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अपने पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव को वहां सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। दास शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुम शीघ्र ही वे सारा वृतांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रुद्र पराक्रम सर्वत संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लौह संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और रोष पूर्वक उसे पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुए। वर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महावली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिवगणों के अगुआ थे। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उसमें भी 10 अंगुली अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलाग के समान जान पड़ रहे थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था और वे 1,000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्व सर्वथ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर 13 प्रकार के संनिपात रोग पैदा हो गए। तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुए जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। इतने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करके हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र यथाचित करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र सोम सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए, मुझे इस समय कौन सा कार्य करना है। तो इस तरह से महाकाली और भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया और उन्हें फिर आदेश दिया कि वो दक्ष के यज्ञ में जाए। क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने से समय में संपूर्ण पर्वत को पीस डालना है। मैं एक क्षण में ही ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या देवता मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं। शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को लोक को उलट पुलट दूं या समस्त प्राणियों को विनाश कर डालूं? तो गाइस, आप सभी का स्वागत है शिव पुराण में। अगर किसी को मेरी वॉइस आ रही हो प्रॉपर, तो प्लीज वो मुझे कमेंट करके बस बता दें कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं। ॐ त्र्यम्बकं यच महिष वन्दिं वष्टिवन्दनम् वरवारम्। शंकर, आप किसी भी तिनके को भेज दें, वे अभी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। संभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तद्यपि जो मुझे भेजा जा रहा है ये मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शिव शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके के आदि को भी हिलने में समर्थ नहीं है, ये संदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभु, मेरा दाहिना अंग बार बार फड़क रहा है, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, मुझे कोई अभूतपूर्व एक विशेष हर्ष का उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आपके शुभ के आधार है जिसकी आप में सृजित भक्ति है, उसी को सदा विजय प्राप्त हो और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी यह बात सुनकर सर्व मंगला के पति भगवान शिव शंकर बहुत संतुष्ट हुए। बोले, वीरभद्र तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उसने मूर्ख को बहुत घमंड हो गया है, अतः इन दिनों में विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है, तुम यज्ञ परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष या कोई और तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उसे भी आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। बगीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां पे ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चित ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त हो वहां ठहरा हो, उन सबके सबको मेरे द्रोही ही हैं, अतः तुम अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों सारभूत उपकरणों के साथ बैठा हो, उन सबको जलाकर भस्म कर देना। उसके पश्चात फिर शीघ्र ही लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि तुम्हारे सामने सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें जलाकर शीघ्र आग की ज्वाला में जलाकर छोड़ देना। वीर, वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बंधुओं सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जलाकर लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक काल भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंख किए हुए महावीर वीरभद्र को ऐसा कहकर चुप हो गए। और इस तरह भगवान शिव ने वीरभद्र को यह आदेश दिया और इस तरह से बोला, जिनको उन्होंने अपने जटाओं से उत्पन्न किया था उन्हें बोला कि जाओ और दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश कर दो। नारद महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरवत बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवाधिदेव शूल की उपयुक्त आज्ञा से शिरोधार्य करके वीरभद्र यहाँ से शीघ्र दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले गए। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रलय के समान तेजस्वी थे। कौतूहलकारी प्रवल वीर प्रथमगण और वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों लोग पार्षद गण थे, वो उन सबका स्वरूप रुद्र के समान ही था। उस गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लपेटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकारी दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था और उसमें 10,000 सिंह जोते जा रहे थे। वे प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उन रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, शानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वारिता तथा वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रथमा, गुहाका, कुष्पांडा, परपट, चटका, ब्रह्म, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि, ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए, दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इसके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां को प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बज उठने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुगत शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उद्धर, दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवर्षि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई ओर आंख, बाई ओर भुजा और बाई जांघ फड़फड़ाने लगी। तात वाम अंग का वह फड़फड़ाना सर्वदा अशुभ सूचक और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो उठी। सूर्य मंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिसे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूटकर गिरने लगे और वह भी बहुत भयानक अक्षगुन होने लगे। इसी बीच वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेष दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित है, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की वे बात सुनकर पूर्व तक अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो विशुद्ध हो गए और उन्होंने सज्जन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। दक्ष बोले, हे देव, हरे, विष्णु, दीन बंधु, कृपानी, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं और यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसा कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते, मुनीश्वर, इस तरह श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरे वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकारी और महामंत्र समान सुखदाय होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वदा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ पूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं होती, वहां दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये तीनों संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करके करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यहाँ मैं तुम्हारे सच की बात करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे और सबके सब बड़े शूरवीर निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत वन और कननों सहित कांपने लगी। संपूर्ण समुद्र में ज्वारा आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उन विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री के साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। ईश्वर वश्चा सर्वे कार्य भवन्ति सर्वथा विफलम नित्वम नैवम विपत्ति पदे पदे अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजनी ना पूज्यन्ते अपूज्या यज्ञ पूज्यन्ते पूजनी ना पूज्यन्ते वीणी तत्र भविष्यन्ति दरिद्रियम मरयम भयाम। तो इस मंत्र का जो अर्थ है वो अर्थ यही है कि जहाँ पे अपूज्यों को पूजा जाता है और जहाँ पे जो पूज्य ईश्वर हैं उनको नहीं पूजा जाता है उस जगह पे अविनाश होना या उस जगह पे विनाश होना या उस जगह पे चीजों का सही रूप से ना चलना या उस जगह पे अमंगल होना निश्चित ही है। और इस तरह से ये चीजें होती हैं। तो आगे चलते हैं। काट दिया? हाँ बस 5 मिनट और कर दे। नहीं रहन 5 मिनट में कर दे। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रयाद माने गए हैं। विष्णु आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु आप वेदत्व धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं, अतः प्रभु आपको मेरी इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। दक्ष, उसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वो सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी कुरता पूर्वक बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषचर में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? ये कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसके अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को होता है वे अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म है इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना तुम्हारा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उसकी भक्तिपूर्ण कार्य करता है उसी को भगवान शिव का तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते हैं तथा ईश्वर को नहीं मानते वे शत कोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं क्योंकि वो केवल सकाम कर्म को ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रु मर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रों का नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी आवश्यक ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने दक्ष को कुछ चीजें समझाई और उनको कुछ सत्व वचन बोले जो दक्ष अपनी कुबुद्धि के कारण उस समय भूल चुके थे, जो दक्ष अपने अहंकार के कारण वो शब्द और वो वचन भूल चुके थे। भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उनके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगण की सेना समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगण का घोर युद्ध आरंभ हो गया। सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे, एक दूसरे के साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र अपनी लोकपाल ही उस समय दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदांतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समरागण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्राज्ञ दयानिधे, शीघ्र बताएं, हमें जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनके बात सुनकर बृहस्पति प्रश्न पूर्वक बोले, भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वे समय समय घटना में घटित हो गया है, मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता के ही आश्रय लेता है, कर्म करने वाले को उस कर्म का फल देता है, जो कर्म करता ही नहीं है उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो, बन गया? हाँ, 2 मिनट में बस उठ रही हूँ। उसको उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ना मंत्र ना औषधियां ना समस्त विचारा कर्म, ना लौकिक पुरुष ना कर्म, ना वेद ना पूर्व और ना उत्तरी मीमांसा तथा ना ना प्रकार के वेदों से युक्त अन्याय शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वास्थ्य करके भी महेश्वर को भलीभांति नहीं जान सके, ये महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वदा शांत निर्विकार और उत्तम दृष्टि के सदा शिव को तत्व का साक्षात्कार ज्ञान है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर मैं इसमें सिद्ध का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा, तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए, बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिसके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना कार्य पूर्ण करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, इस यज्ञ के विध्वंस का निवारण करने के लिए वसुता तुम में से किसी के पास कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की ये बात सुनकर इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि की रक्षा से प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक होकर शीघ्र बोले, देवादि देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, अब दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए, आप ही यज्ञ हैं और इसमें संशय नहीं है। यज्ञ का कर्म है, रूप है और अंग है, आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए, इसके सिवा कोई और रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषियों का ये वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्धत देखकर शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वीरभद्र की बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले, वीरभद्र आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव के विमुख ना कहो। दक्ष ज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसे मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की और मैं भक्ता के अधीन ठहरा, इसके लिए चला आया। महान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं, तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप और उत्तम प्रताप के आश्रय हो, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हारे आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको, परिणाम यही होगा जो होने वाला है, मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर महायायु वीर भद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा, महाप्रभु मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी, इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जैसे शिव है वैसे आप है, जैसे आप है वैसे शिव है, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन है कि शिव की आज्ञा के अनुसार ही रमानाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है इस वाद विवाद के अवसर के अनुसार ही आप मेरे हर बातों को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते वीरभद्र का ये वचन सुनकर श्री हसी हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो, तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते ऐसे कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद, तदांतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और शंकरा धनुष तीन टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा हुए सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु उस महान गणनायक वीरभद्र को असहा तेज से संपन्न ज्ञान कर वहां से अंतर ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करने का अत्यंत कठिन है। ये जानते हुए सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतः ही सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महापंख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत मृग का रूप धारण करके वहां से भाग गया। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तिष्क काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े बेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंसे थे। नंदी ने भाग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उसकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गण नायकों ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भाव से भारे अंतवेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उन्होंने उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तिष्क पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभय हो गया, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र इनमें मस्तिष्क का भेदन नहीं हो सकता। तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मोड़कर तोड़ डाले। और फिर सिर्फ दो ही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे ही सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचर पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। तो इस तरह शिव पुराण का ये जो 20वां 21वां एपिसोड था वो पूरा हुआ। और आप सभी का शिव पुराण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए और शिव पुराण सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी रात्रि शुभ हो। हर हर महादेव।